एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान और मेरे साथ हैं
आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान होना आखिर है क्या।
हाँ, किताब का नाम है द थर्ड चिंपैंजी और इसके लेखक हैं जेरेड डायमंड।
बिल्कुल, और ये किताब एक बहुत ही आप कह सकते हैं मौलिक और शायद थोड़ा चौंकाने वाला सवाल भी उठाती है।
सही, हम इंसान हम तो खुद को बहुत खास समझते हैं ना, मतलब पृथ्वी के शासक, सबसे बुद्धिमान।
हाँ बिल्कुल, लेकिन डायमंड पूछते हैं क्या हो अगर असल में बस एक खास तरह के चिंपैंजियों।
और ये सवाल आज के जमाने में मुझे लगता है और भी जरूरी हो गया है।
क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है?
क्योंकि देखिए, एक तरफ तो हम इतनी तरक्की कर रहे हैं एआई, स्पेस ट्रैवल, और दूसरी तरफ
वही पुरानी समस्याएं, लड़ाई, नफरत, पर्यावरण का विनाश। हाँ, ये विरोधाभास तो है।
तो ये किताब हमें अपनी जड़ों की तरफ, अपनी बायोलॉजी की तरफ देखने को कहती है। शायद जवाब वहीं छिपा हो कि हम ऐसे क्यों हैं।
सही बात, तो मूल सवाल यही है, अगर हमारा डीएनए हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार चिंपांजी से 98% से ज्यादा मिलता है,
हाँ, 98.4%,
तो फिर ये जमीन आसमान का फर्क कैसे आ गया? हमारी भाषा, कला, तकनीक, इस ग्रह पर हमारा ये पूरा दबदबा, इसका राज क्या है?
आज हम इसी पहेली को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे।
और इस कोशिश के पीछे जो दिमाग है जेरेड डायमंड का, वो भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है।
हाँ बिल्कुल, उन्हें सिर्फ भूगोल वेत्ता कह देना तो काफी नहीं होगा।
नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो एक असली पॉलीमैथ है, मतलब कई विषयों के जानकार।
उनकी पढ़ाई देखिए, कैम्ब्रिज से फिजियोलॉजी में पीएचडी, लेकिन साथ ही वो जाने माने पक्षी विज्ञानी हैं,
विकासवादी जीव विज्ञानी हैं, मानव विज्ञानी हैं,
और सबसे बड़ी बात उनका अनुभव। उन्होंने सिर्फ लैब में काम नहीं किया है,
सालों तक न्यू गिनी के दूर दराज इलाकों में फील्ड वर्क किया है, ऐसी जगहों पर जहां शायद आज भी जिंदगी हजारों साल पहले जैसी हो।
तो उन्होंने मानव समाजों को, प्रकृति को बहुत करीब से देखा है। ये चीज उनकी सोच को एक अलग ही गहराई देती है।
हाँ, वो सिर्फ किताबी ज्ञानी नहीं है, वो अलग अलग फील्ड्स, जेनेटिक्स, इतिहास, भाषा विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, सब कुछ जोड़कर देखते हैं।
एक तरह के सिंथेसाइजर है वो, जो बिखरे हुए ज्ञान को जोड़कर एक बड़ी समझने लायक तस्वीर बनाते हैं।
और इसलिए वो द थर्ड चिंपैंजी जैसा, मतलब इतना बड़ा और मुश्किल विषय लेने के लिए शायद सबसे सही इंसान है।
वो विज्ञान की जटिल बातों को भी कहानी की तरह समझा देते हैं।
हाँ बिल्कुल, तो ये किताब आखिर है किस बारे में? जैसा हमने शुरू में कहा, ये सिर्फ मानव विकास की कहानी नहीं है।
नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारी अपनी प्रकृति की खोज है, कभी कभी थोड़ी असहज करने वाली खोज भी।
डायमंड हमें याद दिलाते हैं कि हम कितने भी अनोखे हों, है तो हम जानवर ही, प्रकृति का हिस्सा।
हाँ, बस एक बहुत ही अजीब और ताकतवर किस्म के जानवर।
किताब का जो केंद्र बिंदु है वो इसी विरोधाभास पर टिका है। 98.4% डीएनए चिम्स जैसा, सिर्फ 1.6% का अंतर।
और इस 1.6% में क्या कुछ नहीं आ गया? चांद पर जाना, मोनालिसा बनाना,
और दूसरी तरफ नरसंहार करना, पर्यावरण को तबाह करना। ये कैसे हुआ? चिंपैंजी भी लड़ते हैं पर ऐसे नहीं।
तो डायमंड का तर्क क्या है? क्या ये फर्क हमारे शारीरिक विकास से आया?
नहीं, वो कहते हैं कि जैविक विकास तो बहुत धीमा था, असली जो धमाका हुआ वो हमारी सांस्कृतिक क्रांति से हुआ। और उसका इंजन क्या था?
भाषा।
हाँ, जटिल भाषा का विकास। जैसे ही हमने जटिल भाषा विकसित की, ऐसा लगा मानो हमारे दिमाग का एक नया दरवाजा खुल गया।
हम सोचने लगे, योजना बनाने लगे, बड़े समूहों में सहयोग करने लगे,
कल्पना करने लगे, सीखना सिखाना आसान हो गया। इसी ने उस सांस्कृतिक विस्फोट को जन्म दिया। फिर हमारी अजीब यौन आदतों पर जाती है
कला, कृषि की शुरुआत,
और उसके हैरान करने वाले नतीजे
हमारी हिंसा की प्रवृत्ति, पर्यावरण पर हमारा असर,
और आखिर में हमारा भविष्य।
तो संक्षेप में कहें तो ये किताब एक आईने की तरह है ना?
हाँ, एक ऐसा आईना जो दिखाता है कि हमारी अच्छाई और बुराई दोनों की जड़ें हमारे विकासवादी अतीत और हमारी अनोखी सांस्कृतिक यात्रा में हैं।
ये समझने में मदद करती है कि हम एक ही समय में इतने क्रिएटिव और इतने डिस्ट्रक्टिव कैसे हो सकते हैं।
चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं किताब के। डायमंड ने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा तो सीता बायोलॉजी का है,
और यही पहला झटका लगता है, वो तीसरा चिंपांजे वाली बात।
हाँ, जेनेटिक सबूत इतने साफ हैं कि डायमंड कहते हैं अगर कोई एलियन वैज्ञानिक आता ना तो वो इंसानों, चिंपैंजियों और बोनोबोस को एक ही ग्रुप में रखता।
मतलब हम बस एक अलग किस्म के चिंपैंजी हैं। ये सोचना ही कितना, मतलब हमारे अहंकार को चोट पहुंचाता है।
बिल्कुल। और फिर आता है वो रहस्यमयी दौर, ग्रेट लीप फॉरवर्ड।
हाँ, वो लगभग 50,000 साल पहले वाला, जब अचानक सब कुछ बदल गया।
सही। लाखों साल तक हमारे पूर्वज जैसे होमो इरेक्टस, वो साधारण पत्थर के औजार बनाते रहे। बहुत धीरे धीरे बदलाव आया।
फिर अचानक से 50,000 साल पहले खासकर यूरोप में हमें कमाल के औजार मिलने लगते हैं।
हड्डियों और सींगों से बनी चीजें, गहने और वो गुफाओं की पेंटिंग्स, अद्भुत। ऐसा क्यों हुआ?
डार्विन का अंदाजा है कि शायद यही वो वक्त था जब हमारी भाषा सिर्फ इशारों या कुछ आवाजों से आगे बढ़कर जटिल बनी।
एक ऐसी भाषा जिससे हम भविष्य की सोच सकें, कहानियां सुना सकें, मिलकर काम कर सकें।
इसी भाषा ने शायद उस सांस्कृतिक विस्फोट को, उस ग्रेट लीप को संभव बनाया।
तो ये तो ही जेनेटिक्स और उस बड़ी छलांग की बात। अब दूसरा भाग, वो और भी निजी चीजों पर आता है, हमारा जीवन चक्र, हमारी यौनिकता।
हाँ, और यहाँ भी हम बाकी जानवरों से बहुत अलग हैं, जैसे वो ओव्यूलेशन वाली बात।
बिल्कुल। ज्यादातर माला जानवरों में ये साफ पता चलता है, पर इंसानी महिलाओं में ये छिपा होता है। क्यों?
और हम सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए सेक्स नहीं करते, मतलब आनंद के लिए, रिश्ता बनाने के लिए भी। ये भी तो जानवरों में कम ही होता है।
हाँ, और पिता का बच्चों के पालन पोषण में इतना ज्यादा शामिल होना, ये भी कई प्राइमेट्स में नहीं दिखता। ये सब विकास की पहेलियां हैं।
और रजोनिवृत्ति, मेनोपॉज, ये तो और भी अजीब है,
है ना? ज्यादातर जानवर तो जीवन भर बच्चे पैदा कर सकते हैं, पर इंसान औरतें अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बिना प्रजनन क्षमता के गुजारती हैं। क्यों?
डायमंड यहाँ दादी परिकल्पना का जिक्र करते हैं।
हाँ, ग्रैंड मदर हाइपोथेसिस, कि शायद एक उम्र के बाद औरत के लिए अपने नाती पोतों की देखभाल करना ज्यादा फायदेमंद है बजाय खुद और बच्चे पैदा करने के।
इससे नाती पोतों के बचने की संभावना बढ़ती है और दादी के जीन्स आगे पहुंच जाते हैं।
दिलचस्प सोच है कि बूढ़ा होना भी एक तरह का विकासवादी अनुकूलन हो सकता है।
वाकई। अच्छा, अब आते हैं तीसरे भाग पर, वो चीजें जो हमें शायद सबसे ज्यादा इंसान बनाती हैं, भाषा।
हाँ, भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं, ये हमारी सोच का आधार है,
हमारी कल्पना, हमारे सहयोग की बुनियाद। बिना भाषा के तो कुछ भी नहीं होता, ना विज्ञान, ना समाज।
और फिर कला, हम क्यों बनाते हैं कला, पेंटिंग, संगीत, कहानियां।
क्या ये सिर्फ ध्यान खींचने का तरीका है या इसका कोई और गहरा मतलब है? पहचान बनाना, समूह को जोड़ना।
डायमंड इन सवालों पर विचार करते हैं और इसी भाग में आता है वो सबसे विवादास्पद अध्याय,
कृषि पर, खेती पर। हम तो हमेशा से इसे महान उपलब्धि मानते आए हैं,
लेकिन
डायमंड का नजरिया बिल्कुल उल्टा है। वो इसे कहते हैं मानव इतिहास की सबसे बड़ी गलती।
ये सुनकर तो मैं भी चौंक गई थी, सबसे बड़ी गलती।
हाँ, उनका तर्क है कि खेती से पहले हम शिकारी संग्राहक थे, कई तरह की चीजें खाते थे, ज्यादा पौष्टिक। खेती से हम कुछ ही फसलों पर निर्भर हो गए, गेहूं, चावल, मक्का, पोषण कम हुआ।
फिर एक जगह टिक कर रहने से, जानवरों को पालने से बीमारियां बढ़ी, गंदगी बढ़ी,
और सबसे बड़ी बात, निजी संपत्ति आई, जमीन, अनाज। इससे समाज में पहली बार अमीर गरीब का भेद गहरा हुआ,
शक्ति कुछ ही लोगों के हाथ में आ गई, असमानता बढ़ी।
ये वाकई सोचने वाली बात है, क्या ज्यादा जनसंख्या और बड़े शहर हमेशा बेहतर जिंदगी का मतलब है? डायमंड सवाल उठाते हैं।
इसी भाग में वो नशे की लत की भी बात करते हैं, विकासवादी असंगति से जोड़कर।
हाँ, कि हमारा दिमाग पुराने जमाने के हिसाब से बना है, उसे मीठे फल जैसी चीजों से खुशी मिलती थी,
और आज ड्रग्स उसी रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं, ऐसी जबरदस्त लत लगाते हैं जिसके लिए हम तैयार ही नहीं थे।
अब चौथा भाग, हमारी विश्व विजय की कहानी, इंसान अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया में कैसे फैले,
और जहां गए वहां के बड़े जानवरों का क्या हुआ, मैमथ, मिशाल, कंगारू ज्यादातर खत्म हो गए। क्यों?
डायमंड दिखाते हैं कि पर्यावरण का विनाश कोई आज की बात नहीं है, ये औद्योगिक क्रांति से शुरू नहीं हुआ।
ईस्टर आइलैंड जैसे उदाहरण हजारों साल पुराने हैं, जहां इंसानों ने अपने ही संसाधन खत्म कर दिए और पतन हो गया।
यहीं पर वो अपने भौगोलिक भाग्य वाले विचार की भी नींव रखते हैं, है ना?
हाँ, बिल्कुल, जो बाद में गन्स, जर्म्स एंड स्टील का मुख्य विचार बना, कि इतिहास में कौन आगे बढ़ा ये भूगोल पर ज्यादा निर्भर था, नस्ल पर नहीं।
ये नस्लवादी सोच को सीधी चुनौती है,
और इसी भाग का सबसे तकलीफदेह हिस्सा है, नरसंहार पर, जेनोसाइड पर।
डायमंड कहते हैं कि अजनबियों के प्रति शक और हिंसा की प्रवृत्ति शायद हमें अपने प्राइमेट पूर्वजों से मिली है,
लेकिन हमने भाषा, विचारधारा और तकनीक से इसे भयानक रूप दे दिया है। बड़े पैमाने पर संगठित हिंसा, नरसंहार,
रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ये। और फिर आता है पांचवां और अंतिम भाग।
हाँ, जो एक तरह की चेतावनी है। वो पहले तो नेन जंगली वाले मिथक को तोड़ते हैं
कि पुराने लोग प्रकृति के साथ एकदम शांति से रहते थे। ऐसा नहीं था।
नहीं, वो भी लड़ते थे, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते थे, बस उनका पैमाना छोटा था।
और फिर वो आज की बात करते हैं, वो दो बादलों की तुलना करते हैं।
हाँ, पहला बादल था परमाणु युद्ध का खतरा, वो शायद कुछ कम हुआ है, लेकिन अब दूसरा बादल है पर्यावरण विनाश, जलवायु परिवर्तन।
और सवाल वही है, क्या हम अपने इतिहास से सीखेंगे, ईस्टर आइलैंड से सीखेंगे,
या उन्हीं गलतियों को वैश्विक स्तर पर दोहराएंगे जिसका नतीजा शायद बहुत बुरा हो सकता है।
इस पूरी चर्चा से कुछ बहुत जरूरी संदेश निकल कर आते हैं। पहला तो यही
कि इंसान सबसे पहले एक जानवर है। हमारी बहुत सी प्रवृत्तियां, अच्छी और बुरी, हमारी जैविक विरासत हैं। इसे समझना जरूरी है।
दूसरा वो विकासवादी असंगति वाली बात, हमारी संस्कृति बहुत तेजी से बदली पर हमारी बायोलॉजी उतनी नहीं।
हाँ, हम पाषाण युग के दिमाग के साथ आज की दुनिया में जी रहे हैं और इससे कई समस्याएं पैदा होती हैं, जैसे हमारी खान पान की आदतें, बीमारियां।
तीसरा, पर्यावरण का विनाश दुखद रूप से मानव इतिहास का हिस्सा रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है।
ईस्टर आइलैंड जैसी कहानियां हमें चेतावनी देती हैं, ये आज के क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए जरूरी है।
चौथा, हमारी महान उपलब्धियां अक्सर दो धारी तलवार रही हैं। कृषि ने सभ्यता दी पर बीमारियां और असमानता भी।
तकनीक ने जीवन आसान बनाया पर महाविनाश के हथियार भी दिए।
पांचवा, हमारी जनजातीय मानसिकता, हम बनाम वो वाली सोच, ये हमारे अंदर बहुत गहरी है
और आज की ग्लोबल दुनिया में ये बहुत खतरनाक है। नस्लवाद, कट्टरता, हिंसा इसी से उपजती है।
छठा और शायद सबसे महत्वपूर्ण संदेश
कि अगर हमें भविष्य की चुनौतियों का सामना करना है तो हमें अपनी इस विकासवादी प्रकृति को समझना होगा। इसे नजरअंदाज करके समाधान नहीं मिलेगा।
हमें अपनी कमजोरियों और ताकतों दोनों को पहचानना होगा और समझदारी से चुनाव करना होगा।
डायमंड के कुछ विचार तो ऐसे हैं जो दिमाग में बैठ जाते हैं, जैसे वो पहली बात।
हाँ, हम अनुवांशिक रूप से चिंपैंजी के इतने करीब हैं, सिर्फ 1.6% का अंतर, कि हमें तीसरा चिंपैंजी कहा जा सकता है।
ये एक लाइन ही हमारे सारे गुमान को तोड़ देती है ना?
बिल्कुल। और फिर वो खेती वाली बात, कृषि क्रांति मानव इतिहास की सबसे बुरी गलती हो सकती है।
ये तो स्थापित सोच पर सीधा सवाल है, प्रगति की कीमत क्या है, सेहत, समानता।
और ये विरोधाभास, वही गुण जो हमें अद्वितीय बनाते हैं, हमारी बुद्धि, रचनात्मकता, सहयोग, वही हमें अभूतपूर्व विनाश की शक्ति भी देते हैं।
हाँ, ये इंसान होने की ट्रेजेडी भी है और जिम्मेदारी भी। हम कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा भी और बुरा भी।
अंत में वो शक्तिशाली अनुस्मारक, हम पृथ्वी के इतिहास के पहले प्राणी हैं जो अपने अतीत को समझ सकते हैं, हम पहले हैं जो सचेत रूप से अपना भविष्य तय कर सकते हैं। सवाल ये है कि क्या हम इस अद्वितीय ज्ञान का उपयोग खुद को बचाने के लिए करेंगे?
ये सवाल सीधा हम सबसे है, क्या हम इस ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे?
और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसके व्यवहारिक पहलू भी हैं, जैसे पर्यावरण नीतियां बनाते समय।
हाँ, अगर हमें पता है कि विनाश की प्रवृत्ति गहरी है तो सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं, व्यवहार बदलना होगा।
समाज में फैले झगड़ों, नस्लवाद को समझने में भी ये मदद करता है।
अगर हम जानते हैं कि हम बनाम वो वाली सोच प्राकृतिक है तो हम उसे पहचान कर चुनौती दे सकते हैं,
सचेत हो सकते हैं।
व्यक्तिगत स्तर पर भी रिश्तों में जो भावनाएं आती हैं, जलन, गुस्सा, प्यार,
उनकी विकासवादी जड़ों को समझने से शायद हम ज्यादा समझदारी से प्रतिक्रिया दे सकें।
और सेहत के मामले में ये विकासवादी असंगति हमें समझाती है कि आधुनिक जीवन शैली क्यों बीमारियां लाती हैं।
शायद हमें थोड़ा प्रकृति के करीब जाने की जरूरत है, ज्यादा चलना फिरना, प्राकृतिक खाना, बेहतर नींद।
इस पूरी चर्चा से सच कहूं, मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात वही कृषि को सबसे बड़ी गलती कहना था।
हाँ, वो वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हम प्रगति मानते किसे हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि हमारी ताकत और कमजोरी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये हमें विनम्र बनाता है पर जिम्मेदार भी।
हम असाधारण हैं पर हम खतरनाक भी हो सकते हैं।
बिल्कुल, ये किताब हमें अपनी जड़ों को समझने, अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानने का न्योता देती है,
ताकि हम एक प्रजाति के रूप में ज्यादा समझदार विकल्प चुन सकें।
तो यहाँ हम आज की चर्चा को रोकते हैं, लेकिन एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। डायमंड हमें हमारी गहरी जनजातीय प्रवृत्ति और पर्यावरण पर हमारे ऐतिहासिक असर के बारे में बताते हैं। ये जानने के बाद हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कौन सा एक छोटा सचेत बदलाव ला सकते हैं जो इनहेरिटेड प्रवृत्तियों का मुकाबला करने में मदद करे, सोचेगा जरूर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।